समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
तस्मात् एक्यम् प्रशंसन्ति दृढ़म् राष्ट्रहितैषिणः, अर्थात जो राष्ट्र का हित चाहते हैं वे ही एकता की प्रशंसा करते हैं। आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। ये दिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये दिन नागरिकों को अपने राष्ट्र और संस्कृति पर गर्व करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो आइए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूँ आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। यस इंडीड, इट इज अ डे ऑफ प्लेज, डिवोशन एंड सैक्रिफाइस। लिसनर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। लिसनर्स, वी आर बैक अगेन विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। We have a bunch of Metro City updates and of course some historical information related to today's day, that is 31st of October. So Akarshita, let's begin with the news items first today.
Ji.
The nation pays homage to Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th birth anniversary today. The day is also celebrated as Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day, highlighting the monumental role Sardar Patel played in uniting India after independence.
Rashtriya Ekta Divas har saal 31 October ko Sardar Vallabhbhai Patel ki jayanti ke upalaksh mein manaya jata hai. Ye din Rashtriya Ekta ko samarpit hai. इस वर्ष की समारोह में एक भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे जो भारत के सुरक्षा बलों की शक्ति, अनुशासन और साहस को दर्शाएंगे।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन एकता नगर गुजरात दिस मॉर्निंग टू लीड द राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशंस मार्किंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। The Prime Minister will begin the day by offering a floral tribute at the Statue of Unity. PM Modi will administer the Ekta Divas pledge and witness grand Ekta Divas parade.
परेड में सीमा सुरक्षा बल, BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, सशस्त्र सीमा बल और असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस इकाइयों की टुकड़ियां शामिल होंगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
The parade will also honor 5 Shaurya Chakra awardees from CRPF and 16 gallantry medal winners from BSF who displayed exceptional courage in anti-naxal operations in Jharkhand and counter-terror operations in Jammu and Kashmir. BSF personnel will also be recognized for their valor during Operation Sindoor.
इस दिवस की याद में एकता मार्च दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक चलेगा, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में जिला स्तरीय पैदल मार्च का आयोजन करेगा।
अलोंगसाइड द पदयात्रा, अ रेंज ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स विल बी अंडरटेकन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स सच एज क्लीनिनेस ड्राइव्स एट वाटर बॉडीज, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स अंडर द सरदार उपवन इनिशिएटिव, Women's welfare campaigns, yoga and health camps, and Vocal for Local promotional campaigns. The second phase will begin from November 26 to December 6, 2025, and will cover 152 kilometers from Karamsad, Sardar Patel's birthplace in Gujarat, to the Statue of Unity in Kevadia. President Draupadi Murmu paid floral tributes at the statue of Sardar Vallabhai Patel at Patel Chowk, New Delhi this morning. Union Home Minister Amit Shah and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid floral tributes to Sardar Patel at his statue.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए आज पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सभी पांच घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ सुबह 9:30 बजे से घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे।
The center has said that curriculum on artificial intelligence will be introduced in all schools from class 3 onwards. The Ministry of Education has said that this initiative marks a nascent yet significant step towards the ethical use of AI to solve complex challenges, as the technology will be organically embedded from the foundational stage beginning in grade 3. It said that artificial intelligence and computational thinking will reinforce the concept of learning, thinking and teaching and will gradually expand towards the idea of AI for public good.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए 76 सुविधा केंद्र विकसित करने की योजना को अनुमति दे दी है। यह निर्णय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुविधा केंद्र बनाने की सफलता के बाद लिया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि देश भर में नियोजित नए सुविधा केंद्र मॉड्यूलर डिजाइन का पालन करेंगे और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी सुविधा केंद्र अगले वर्ष के त्योहारी सीजन से पहले ही पूरे किए जाएंगे।
प्रसार भारती इन कोलैबोरेशन विद कल्चर मिनिस्ट्री विल होल्ड द 67th एडिशन ऑफ आकाशवाणी संगीत सम्मेलन फ्रॉम 2 नवंबर टू 29 नवंबर across 24 centres nationwide. Information and Broadcasting Ministry said in a statement that since its inception in 1954, the Akashvani Sangeet Sammelan has stood as one of India's most enduring and respected cultural traditions. It was conceived to bring the finest streams of Hindustani, Karnataka and light and folk music to audiences across the country. The Sammelan has played a vital role in preserving, promoting and popularizing India's rich musical heritage. Giving details of the Sammelan, Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi said that after a brief interruption due to the COVID-19 pandemic, this grand festival returns this year with renewed vigor. The 2025 edition will feature two concerts at each venue, one dedicated to Indian classical music and the other to light folk music. Panaji in Shillong will exclusively host Western classical presentations reflecting India's regional musical diversity.
आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में कल रात नवी मुंबई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 5 विकेट और 9 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली। बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 338 रन पर आउट हो गई। एक अन्य सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया था। अब रविवार को फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं सरबजीत।
Yes, Akarshita, let's begin with the buzz from Chennai. The Bureau of Indian Standards Coimbatore branch office organized a technical discussion program titled Manak Manthan on the draft Indian Standard requirements and recommendations for template format of hospital bills in Coimbatore yesterday. The program aimed to elicit expert views and stakeholder feedback for the formulation of a uniform and transparent hospital billing standard. The program was attended by 120 participants, including doctors, surgeons, other representatives from hospitals, diagnostic centers, insurance companies, government departments and other stakeholders. Dr. V. Sumathi, Joint Director, Medical and Rural Health Services, Coimbatore, in her inaugural address, underscored the need for standardization in healthcare documentation to ensure legal validity and reduce potential litigation. She further observed that a standardized billing framework would enable the government to frame effective and evidence-based healthcare policies. Through Manak Manthan programs, the Bureau of Indian Standards continues to promote an inclusive and consultative approach to standardization, fostering transparency, accountability, and quality across critical sectors of national importance. The Bengaluru North City Corporation Commissioner, Pomila Sunil Kumar, has issued directions to clear black spots to keep the roads clean. He was speaking after visiting the Sanjay Nagar mustering point of the Hebel division in the city yesterday. The officer instructed the Pora Karmkas or municipal workers to mandatorily wear gloves. He advised the auto tipper garbage van drivers to ensure that the dry and wet waste are segregated at the collection point. He warned that those dumping garbage along roadsides or in open spaces will be identified and penalties imposed. To curb irresponsible behavior of the citizens, the Bengaluru Solid Waste Management Limited is educating the public on proper disposal of household waste. Kargoda informed that around 65 waste kiosks will be installed in Bengaluru to eliminate black spots, control foul odor, and address the problem of dumping waste on roadsides and drainage. Each kiosk will have 4 garbage collection bins with a capacity of 100 liters each. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy will be conducting an aerial survey of the flooded areas in Hanamkonda and Warangal districts later today. Heavy rainfall triggered by severe cyclonic storm Montha caused extensive flooding and waterlogging across these districts. The NDRF and SDRF teams have shifted over 2,000 people to safety. Normal life has been disrupted with storm water inundating several localities and waterlogging on roads in different areas in the tri-cities of Warangal, Hanamkonda and Kezipet. The authorities have deployed drones to deliver food to residents stranded in inundated areas like BR Nagar. Over a dozen flood shelter homes have been set up. And Akarshita, what is the update from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji, aur ab khabrein Delhi se. Delhi sarkar ne 50 crore ki yojana ke antargat 13,900 se adhik yuvaon ko khadi, handloom aur kutir udyogon mein prashikshan dene ka nirnay liya hai. एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पहल न केवल युवाओं को स्वावलंबन की राह पर ले जाएगी बल्कि देश की हस्तशिल्प परंपरा और स्वदेशी उद्यमिता को भी नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद कल जय सिंह मार्ग स्थित एनडीडीसी कन्वेंशन में सुविधा कैंप का आयोजन करेगी. ये कैंप जनता के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहेगा. इस सुविधा कैंप में पालिका परिषद के अलग अलग विभागों के हेल्प डेस्क मौजूद होंगे जिसमें लोगों को बिजली सर्विस, प्रॉपर्टी टैक्स, जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट तथा दूसरी अन्य पालिका सुविधाओं के साथ बुकिंग से जुड़े मामलों में मदद मिलेगी. भारत के प्रथम गृहमंत्री, भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कल विधानसभा में सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया. विधानसभा परिसर में सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा शीर्षक पर एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया जिसमें लौह पुरुष के जीवन, दृष्टि और विरासत को दर्शाने वाले दुर्लभ अभिलेखीय चित्र और ऐतिहासिक तस्वीरें शामिल की गई. दिल्ली सरकार ने पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आवेदन पर लगाई गई 1 साल की समय सीमा को समाप्त करने का फैसला लिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाली गाड़ियों को अब दूसरे राज्यों में पुनः पंजीकरण के लिए एनओसी प्राप्त करने की सुविधा होगी जिससे लाखों वाहन मालिकों को राहत मिल सकेगी. दिल्ली के समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक शहर की रूफटॉप सोलर क्षमता लगभग 500 मेगावाट तक बढ़ाई जाएगी। श्री सिंह ने ये जानकारी राजधानी के किलोकरी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं महासभा को संबोधित करते हुए दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी स्वच्छ और स्मार्ट ऊर्जा की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और दिल्ली में अब तक 250 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित हो चुकी है। और अब खबरें मुंबई से। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज नवी मुंबई में एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। ये दौड़ एरोली सेक्टर 20 स्थित रबाले पुलिस स्टेशन द्वारा आयोजित की जाएगी। दौड़ एरोली सेक्टर 14 स्थित इच्छापूर्ति गणेश मंदिर क्षेत्र से शुरू होगी और एरोली सेक्टर 20 स्थित नेवा गार्डन सोसायटी में समाप्त होगी। नवी मुंबई नगर निगम द्वारा नगर मुख्यालय में राष्ट्रीय एकता की सामूहिक शपथ भी ली जाएगी। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ की भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने कल अपने प्रमुख कार्यक्रम ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2025 के 23वें संस्करण की घोषणा की, जो 27 से 29 नवंबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। और अब खबरें कोलकाता से। खनिज और खनन उपकरणों पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कल कोलकाता में शुरू हुई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के 700 स्टॉल लगाए गए हैं। ये प्रदर्शनी 2 नवंबर को समाप्त होगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्ता ने किया। श्री दत्ता ने कहा कि पिछले एक साल में 1 अरब से ज्यादा कोयला निकाला गया और कोयले की आपूर्ति और वितरण ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल।
Well, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperatures will be around 26 degrees Celsius. Maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky again. The minimum temperatures around 20 degrees Celsius. Maximum may go up to 29 degrees. Hyderabad too is expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperatures will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं दिल्ली के मौसम का हाल। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया हुआ है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। और कोलकाता में भी आंधी और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है।
Listeners, you are with us in the program Aaj Savere, and this Akarshita brings us to the last and the most interesting segment of this program. After this update of national and international news, metro city updates, let's now flip the pages of history to see what makes 31st of October so memorable and so special. So, 31st October 1864, Nevada became the 36th state of America.
और आज के दिन ही 1914 में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1941, on this day, after undergoing work for nearly 15 years, the construction of the famous Mount Rushmore National Memorial in US was completed.
और आज के दिन ही 1996 में रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों की मंजूरी मिली।
1953 टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बिगैन इन बेल्जियम।
आज के दिन ही 2000 में सोयुज TM-31 को लॉन्च किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लंबे समय तक रहने वाले पहले दल को लेकर गया।
1956 ब्रिटेन एंड फ्रांस बिगैन बॉम्बिंग इजिप्ट टू रीओपन द स्विस कैनाल। 1959, on this day, the Soviet Union and Egypt signed an agreement to build the Aswan Dam on the Nile River. And 1966, India's famous swimmer Mihir Sen swam across the Panama Canal.
और आज के दिन ही 2011 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कहा कि दुनिया की आबादी 7 अरब तक पहुंच गई है। और आज के दिन ही 2018 में भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई, जिससे ये 597 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई। और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। राष्ट्र आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। लौह पुरुष के नाम से प्रचलित सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय कराया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री थे और उनके पास गृह मंत्रालय भी था। सरदार पटेल ने गुजरात में दुग्ध सहकारी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। भारत सरदार पटेल की असाधारण सेवाओं, उनकी प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्र को एकजुट करने के उनके प्रयासों के लिए सदैव उनका आभारी रहेगा।
Yes, indeed, Akarshita. Today we are paying tributes and homage to the great independence activist, the great statesman, as you rightly said, who served as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India. And in fact, Patel organized relief efforts for partition refugees too, fleeing to Punjab and Delhi from Pakistan, and worked to restore peace. Sardar Patel's commitment to national integration in the newly independent country earned him the title of Iron Man of India. And Sardar Patel is also remembered as the patron saint of India's civil servants for playing a pioneer role in establishing the modern All India Services system. Listeners, we have an exclusive excerpt of Sardar Patel's speech from the Prasar Bharati archives.
Radio, aajkal ki zindagi mein kaam ke liye ek aavashyak vastu ho gayi hai. Usse bahut fayda pahunchta hai logo ko aur भारत की एकता में भी उसका काफी हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम मध्य प्रांत के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आग्रह पूर्वक विनंती करते हैं कि हर जगह पर जहां तक हो सके रेडियो लगाया जाए और देहात के लोगों को फायदा पहुंचे, इसलिए आम जनता में रेडियो सुनने की अनुकूलता की जाए।
आज हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन की पुण्यतिथि है। सचिन देव बर्मन को एसडी बर्मन के नाम से भी जाना जाता है। एसडी बर्मन ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में रेडियो द्वारा प्रसारित पूर्वोत्तर लोक संगीत के कार्यक्रमों में संगीतकार और गायक दोनों के रूप में काम किया। एसडी बर्मन 10 वर्ष तक लोक संगीत के गायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। सन 1944 में फिल्मिस्तान के शशाधर मुखर्जी के आग्रह पर बर्मन दा अपनी इच्छा के विरुद्ध दो फिल्म शिकारी व आठ दिन करने के लिए मुंबई चले गए। शिकारी और आठ दिन व बाद में दो भाई विद्या और शबनम की सफलता के बाद भी बर्मन दा को पहचान बनाने में वक्त लगा। इसी के बाद मशाल का संगीत सुपरहिट हुआ, 1951 की बाजी हिट फिल्म थी और फिर जाल, बहार और लड़की के संगीत ने बर्मन दा की सफलता की नींव रखी। बर्मन दा ने उसके बाद तो 1974 तक लगातार संगीत दिया। प्यासा, गाइड, बंदनी, टैक्सी ड्राइवर, बाजी और आराधना जैसी फिल्मों के मधुर संगीत के जरिए एसडी बर्मन आज भी लोगों के दिलों दिमागों पर छाए हुए हैं। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए।
खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
Akarshita, you know, such a graceful blend of rusticity of folk music, elegance of classical music. Such was the genre of S.D. Burman.
True, very
and,
true.
And, you know, besides being a composer, the great S.D. Burman was a singer too. In fact, we've also managed to get a song in his own voice.
Ore Maji, Ore Maji, oh, oh, Mere Maji. मेरे साजन है उस पार मैं मन मार हूँ इस पार ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार मेरे साजन है उस पार मैं मन मार हूँ इस पार ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार मेरे साजन है उस पार।
और सरबजीत, लता मंगेशकर जी ने भी काफी कुछ बताया है या बोला है उनके बारे में, हमारे पास कुछ है तो वो भी हम दर्शकों को जो है सुनाना चाहेंगे।
जी आकर्षिता, दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया टू हियर फ्रॉम यू नो द ग्रेट आइकॉनिक सिंगर लता मंगेशकर जी।
जब गाना सिखाते थे वो गाते थे ज्यादा, उनका जो स्टाइल था वहाँ का फोक का, उस स्टाइल से वो खुद गाते थे, और वो खुद जब गा के बताते थे तो हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती थी कि अब दादा की तरह कैसे गाए, तो उनकी आवाज जरा सी टूटती थी तो वो हम नहीं करते, मतलब मैं नहीं कर सकती थी, पर मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि दादा ये कैसे गाऊं, तो वो बताते थे कि तुम ये इस तरह गाओ तो अच्छा लगेगा, और जब उनको अच्छा लगता था तो बहुत आके मेरे पीठ पे हाथ रख के कहते थे कि बहुत खुश रहो लता, और उनका खास मतलब जब वो बहुत अप्रिशिएट करते थे तो उनकी खास बात थी पान खिलाते थे।
उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
लिसनर्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, वी आर रिमेम्बरिंग पी लीला। टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी। शी इज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर, कर्नाटक वोकलिस्ट एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर। P. Leela began her career as a playback singer way back in the year 1948, and she recorded songs in various languages including Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, Hindi, Bengali, Sanskrit, Uriya, Gujarati and Marathi.
भारत सरकार ने पी लीला को 2006 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। आइए सुनते हैं उनका ये शास्त्रीय गायन।
तुषार शीतल सरो
आज प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार, निबंधकार अमृता प्रीतम की पुण्यतिथि है। उन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री माना जाता है। अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में से थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मान किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया जा चुका था। आइए सुनते हैं अपने साथी कलाकार इमरोज के लिए उनकी लिखी ये कविता।
मैं तेनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी चिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जां खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तैनू तकती रहांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी।
लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग टुडे कर्नल कोटारी कयाकया नायडू। टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी। क्रिकेटर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हु सर्व्ड एज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज greatest cricketers. Naidu's first class cricket career spanned 47 years from the year 1916 to 1963, setting a world record.
Aaj bhartiya vyangkar aur lekhak Kalika Prasad Saxena ki punyatithi hai. Swadesh, Lagan, Halchar aur Jodha Akbar jaisi filmon ki patkatha aur samvad likhne ka karya unhone kiya tha. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सरबजीत को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।